प्रातः काल जो है जब 10 बज चुके थे तो रामेश्वर जालान ने कहा कि भाई आप ये जो दया को विषय है सुरक्षा को विषय जी कह रहे और सुनाओ। तो यही बात कही भाई अब और समय नहीं है, दूसरे समय में कहे जा सके है। तो एक आपको कहानी सुनाई जाए है, कहानी से बात याद विशेष रूप से रह सके। एक कोई सन्यासी माने सन्यास शास्त्र में एक महात्मा थे, पर दिन की 11 बजे किसी गृहस्थी के यहाँ भिक्षा के वास्ते गए और जाकर के उपवास दी कि नारायण हरि। वह गृहस्थी है सो भीतरी था, दौड़ कर बार मार दुर्जे के ऊपर और हाथ जोड़ करके के चरणों में गिर गया और रोने लग गया। महात्मा ने पूछ रहे भाई तू रोते क्यों हो? बोले महाराज मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्री नहीं है, मैं इतना गरीब और समझो कि दुखी हूं कि जिसको मैं क्या कहूं। रोने का कारण यह है कि आप हमारे घर के ऊपर आए और नारा नहीं किया कि कुछ भिक्षा दो। तो महाराज हम क्या कहें, हम घर वाले सब 3 दिन के भूखे हैं, खाने के वास्ते घर में अन्न का दाना नहीं है, और शहर के लोगों ने बड़ी मदद करी, पहले उधारा भी रुपया दिया, काम चलाया, आखिर में सब एकदम हैरान हो गए, थक गए, फिर समझो कि इसी प्रकार से लोगों से सहायता ली। अब लोग देने वाले कितने दिन दे रहे हैं, तो 3 दिन से हम भूखे हैं, हमारे समान कोई गरीब अनाथ दरिद्री भूखा नहीं। तो उस महात्मा ने कहा भाई तुम्हारे समान तो कोई संसार में धनी नहीं है, और तुम तो चाहो तो सबको मालोमाल कर सकते हो, और अंक को भी धनी बना सकते हो, दरिद्री को भी एक प्रकार से थी उसके दरिद्र को खो करके उन्हें एक महान बना सकते हो, ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है। उस गृहस्थी ने कहा महाराज मेरी तो कोई न सामर्थ्य है, न कोई करामात है, न मेरा पास रुपया है, आप किस प्रकार की बात कहो वो भी समझ में नहीं आती। आप कहते हो कि तुम्हारे समान कोई धनी नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्री नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अनाथ नहीं, बिल्कुल एक विपरीत बात आप कह रहे। बोले नहीं हम विपरीत नहीं कहते हैं, हम सत्य बात कहते हैं कि तुम्हारे वो कहके वहाँ क्या है। बोले वो तो सिर लोडा है, पत्थर को उठा करके लोडे को उठा। बोले ये क्या है? बोले ये तो महाराज अपना पत्थर है, पत्थर। बोले हम नहीं मानते। बोले आप मानो चाहे न मानो, वो तो 1000 आदमियों से कहा दूं कि ये तो पत्थर है। अरे बोला हम तुम्हारे 1000 आदमियों की बात सुने कि हमारे को जो प्रत्यक्ष दिखे वो बात सुने। महाराज आपको कुछ और ही दिखता है, पत्थर नहीं दिखता। बोले नहीं हमारे को और ही दिखता है। तो महाराज क्या कहें, एक प्रकार से थी आपकी दृष्टि का दोष हुए। अरे बोले हमारी दृष्टि का दोष नहीं है, तुम लोगों की दृष्टि का दोष। तो ये क्या है कि तुमने कभी पारस का नाम सुना था? बोले सुना। उसका प्रभाव भी सुना, मैंने सुना क्या सुना कि लोह के छुआ देवे तो सोना बढ़ जावे। बोले वो ही चीज ये है, तुम्हारे घर के बीच के वहां कोई लोह का बर्तन है? हाँ। बोले हमारा तवा है, सन्यासी है, करछी है, चक्कू है, चिमटा है, कुंची है। यूं तो गृहस्थी आदमी ठहरे, इस तरह से लोह के बर्तन तो भी पड़े हैं, बेचे नहीं है, पर भूखा क्या नहीं करता, भूख बर्ता सब कुछ कर सके। बोले लाओ, लाए, उसको छुआते गए, सोना बनता गया। बोले अब बता, ये सोना है पारस? बोले महाराज जी तो प्रत्यक्ष अब पारस है, अब कोई तुम्हारे को कहे कि ये पत्थर है तो तुम मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। हम कैसे माने? अब तू बतला कि तेरे समान कोई संसार में धनी है क्या? बोले महाराज नहीं। और तू चाहे तो हजारों आदमियों को धनी बना सके, लखपति बना सके? हाँ। बोले बना सकता हूँ। तो ये पत्थर तुम मांग रहे थे तो तुम्हारे घर में ही पड़ा था, कहीं आया क्या? बोले बाहर से कहीं से नहीं आया, हमारे घर में ही था। तो हम जानते इसलिए हम अपने दुखी हो रहे। तो यही बात एक प्रकार से भगवान की दया के विषय में है। भगवान की दया से दया तो पहले से ही है, जैसे वो पत्थर उनके घर में पहले से ही था, तो भगवान की दया तो अपने पहले से ही है। किंतु हम उस भगवान की दया को दया नहीं मान रहे हैं, इसलिए बढ़ते फिरते हैं। वो तो रोटियों के लिए बढ़ता था और हम लोग संसार के बीच में चौरासी लाख योनियों के बीच के मारे मारे फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? कि भगवान की दया अपने पर नहीं मानते। दया तो है ही भगवान की, आप मानो तो भी है, नहीं मानो तो भी है। मानने से आगे मनुष्य जाकर उसको जान लेता है, जानने से उसको विशेष आनंद हो जाता है, परमात्मा ही प्राप्त हो जाता है। तो पहले तो आपने सुनी है इस बात की, भगवान की सबके ऊपर अपार दया है, और दया सुनकर के यदि मान लो तो बहुत तो काम हल हो जाए। और मानने के बाद में को ज्ञान तो अपने आप ही हो जाए, और फिर तो मेरा पार है। इस पर भी एक कहानी है, इतने आदमी जो है एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे थे, वर्षा आदमी बड़ी जोर की, आज जो जोर की वर्षा आई उससे भी ज्यादा जोर की। अब शेर एक प्रकार से थी, आंधी आ गई और बादल इतने ऐसे घन हो गए कि अपना हाथ भी अपना नहीं सुनता। तो मैं परिस्थिति के बीच में दैयोग से वहां जंगल के वहां उतारे के लिए किसी धनी आदमी ने धर्मशाला बना रखी थी। वो धर्मशाला में सब लोग थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। उस धर्मशाला में बहुत से कमरे थे, तो कमरों के मां बढ़ गए, किंतु अंधेरा हो और कमरों के मां जाड़ा पड़े व ठंडी हवा चले, तो सब ऐसे धूझ रहे हैं, फिर रहे हैं, किंतु एक कमरा गर्म था। वहां उनको इतनी सर्दी नहीं लगती थी। उनको ये ज्ञान हुआ कि भाई ये गर्मी क्यों है? नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। मार मुक्त मनुष्य। तो बात यह थी कि एक कुएं के बीच के मां अंगार जो है रजक देव जो खीरे पड़े थे अग्नि जो है सो आपने पड़ी थी उस पर मड़ी आ गई राख आ गई तो एक प्रकार से राक्षस जाने के कारण तो वो किसी को दिखती नहीं थी किंतु फिर कमरा गर्म था तो कमरे की गर्मी के कारण सब लोग खोजने लगे कि वो तो सब कमरे ठंडे हैं ये गर्म है तो इसका कोई हेतु होना चाहिए कि क्यों गर्म है। वो कमरा एक प्रकार से इतना बड़ा भी नहीं इससे आधा ही था तो मिल गई वो जो ढकी हुई है पड़ी है लकड़ियां तो बड़े बहुत पड़ी थी ईंधन को कोई घाटो नहीं तो वहाँ एक प्रकार से ईंधन शुरू कर दियो बाद तो प्रकाश हो गयो लोग दौड़ दौड़ कह रहा भाया थोड़ी माने भी अग्नि जो उस वक्त में दिया सही कहा थी नहीं तो सिर्फ अग्नि दे पूछे भी थे क्या करूँगा तो मुसलमान भाई लोग था जी का बोले मैं रसोई बनाकर खाऊंगा और हमारे पास में घी है जी को कटोरी में डाल करके कपड़े की बाती बंद करके फिर रोशनी कर लेवांगा बोले ठीक है। दूसरे सज्जन आए बोले माने भी अग्नि जो थे क्या करूँगा बोलो मेरे अग्निहोत्री ब्राह्मण हाँ सो पुत्र के वास्ते में ये करा इस वास्ते माने दरकार है ले जाओ ठीक। उसे और एक ब्राह्मण आए उसने कहा थोड़ी अग्नि मुझको दीजिए तुम अग्नि को क्या करोगे बोलो अग्नि को मैं माँ अग्निहोत्र करता हूँ अग्निहोत्र करूंगा। अग्निहोत्र क्यों करते हो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से अग्निहोत्र करे तो उसकी आत्मा माने उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है और फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसको भी अग्नि देना और वह सब अपने अपने अभिष्ट काम को करने लगे। अब इसके वहां विचार करना चाहिए अग्नि का ज्ञान नहीं रहा तो भी एक प्रकार से कमरा गर्म रहा इतना लाभ तो उनको भी मिलता ही था बिना ज्ञान के। अग्नि को ज्ञान नहीं तो भी लाभ बनाने मिल रहे थे और उसके बाद के बीच के माँ जब अग्नि को ज्ञान हो गयो कि अग्नि कमरे के माँ है तो वे एक प्रकार से अग्नि से लाभ उठाने लग गया वे भी और दूसरे भी और जो भाई लोग है वे भी तो मुसलमान लोग है वे भी एक प्रकार से लाभ उठाए। अग्नि के वहां श्रद्धा नहीं थी उनकी कि अग्नि देवता है ये समझते थे कि भी अग्नि एक जड़ पदार्थ है इसमें दो शक्तियां हैं कि विदाई का शक्ति एक प्रकाशी का शक्ति एक तो रोशनी करने वाली शक्ति और एक जलाने वाली शक्ति जैसे सूर्य के वहां दोनों शक्तियां हैं जलाने वाली प्रकाश करने वाली और चंद्रमा में एक ही है प्रकाश करने वाली तो है जलाने वाली कोई और ठंड तो अग्नि के बीच के वहां दोनों शक्तियां हैं तो उससे लाभ उठाए लोगों ने और जिनकी श्रद्धा थी कि अग्नि देवता है जो विश्वास हो तो वे अध्यात्म विषय को लाभ उठाए और अपने कामना की सिद्धि विषय को लाभ उठाए जो सहकाम भाव से अग्निहोत्री हो वो अग्निहोत्र कर करके अपने कामना विषय को माने पुत्र की कामना थी तो पुत्र विषय को लाभ उठाए और जिसका एक प्रकार से उत्कोटि का महात्मा बनना चाहता था ऐसा जो पुरुष है साधक है वह उस अग्नि के माँ निष्काम भाव से हवन करो अग्निहोत्र करो तो वह आत्मा की शुद्धि होने के विषय को लाभ उठाए। तो समझना किसी प्रकार से महात्मा जो है, ईश्वर जो है, गंगा जो है, ये बात सभी के ऊपर घटा लो। तो जिस देश के वहां महात्मा बात करे है, उस देश के वहां स्वाभाविक ही फायदो वैदिक को तो हो ही जावे, चाहे बनाने ज्ञान हो चाहे मत हो। जैसे महाराज युधिष्ठिर विराट नगर के वहां बात करते थे, तो भीष्म जी ने कौरवों की सभा में यह बात कही कि जिस दिन राजा युधिष्ठिर होंगे वहां कोई अकाल नहीं पड़ेगा और वहां कोई महामारी नहीं आएगी, कोई भी देवी कोप नहीं होगा, और जहां पर राजा युधिष्ठिर होंगे वहां की प्रजा धर्मात्मा बनेगी, सत बोलने वाली बनेगी, और उस देश के मां धन ऐसो बढ़ेगा, धान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, बहुत सी बातें कही। तो इन सब बातों को सुनकर के दूत है जो थोड़ा इनकार कर दिया था कि पांडु कहीं नहीं मिले, उन्होंने कहा कि ये जो बात कहते हैं ये सारी बात तो विराट नगर के वहां मिला है। अब एक प्रकार से विराट नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो ख्याल करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव पड़ा था कि जिस देश में बात करते थे उस देश के बीच के वहां धन धान और धर्म की तो बढ़ती होती थी, ये तो खूब बढ़ता था वहां, और समझो कि वहां अकाल नहीं पड़ता और महामारी नहीं आती, और वहां साल भर रहे, किंतु ये लक्ष्य किसी का भी नहीं गया कि युधिष्ठिर के वहां ये गुण है, तो भी उन्होंने लाभ उठाए। युधिष्ठिर से थी राजा विराट ने लाभ उठायो और समझो कि वहां के वासियों ने लाभ उठाया, और फिर यो ज्ञान हो गयो कि ये पांडव है क्या ना राजा विराट वगैरह, और विशेष लाभ उठायो। बोला कि ये अर्जुन है, ये विषय है, तो राजा विराट बोले मेरी लड़की उतरा है, देखो ब्याह में अर्जुन के साथ में करो। अर्जुन कहो कि मेरे लड़को अभिमन्यु है, उसके साथ में इसको ब्याह कर दो। तो इसने मैं पढ़ाई इस वास्ते यह मेरे लड़की के समान है, और फिर भी लड़की के समान ही रहेगी, तो अभिमन्यु के साथ में मेरे को ब्याह कर दियो। जब जान गया कि ये पांडव है तो वे और विशेष लाभ उठाने लगा। तो इसी प्रकार से कहीं भी कोई महात्मा रहो, वह महात्मा के रहने से स्वाभाविक जो लाभ है वो तो वही चाहे बने जानू चाहे बस, और विशेष लाभ है महात्मा ने महात्मा जानने से, मांगने से, बने मांगने से भी बहुत लाभ हो जावे, और मानने से आगे जाकर वो जान जाए, जानने के बाद और विशेष लाभ हो जाए, क्योंकि जानने के बाद फिर श्रद्धा हो जाए, और बस श्रद्धा फिर सहकाम हो जिसकी भी लाभदायक हो, और निष्काम हो तो और भी ज्यादा लाभदायक हो जाए। यही बात ईश्वर की भक्ति के मां है। ईश्वर की भक्ति कोई करे बिना प्रभाव जाने, बिना किसी जाने भी ईश्वर की भक्ति करे तो भी सुबह में लाभ हुए। जैसे अजामिल थे तो आपके लड़के को नारायण नाम कढ़ा लियो, और जम के दूध लेने के वास्ते आए तो अपने लड़के को याद किया कि नारायण नारायण, और उसकी ये मान्यता थी कि मैं मेरे लड़के ने बुला रही हूं भगवान ने नहीं। अरे वो एक प्रकार से बेचारा इस बात को नहीं समझता था कि तेरे लड़का का जो नाम है वही भगवान का नाम भी नारायण, तेरे लड़के का नाम भी नारायण, और मैं नारायण नाम का उच्चारण करता हूँ, ये भगवान का नाम है, और इसके उच्चारण करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं और वो जम के द्वारा सो नहीं जाता, ये उसको ज्ञान नहीं था। और फिर जब भगवान के पार्षद आए तब उसको फिर ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद के मध्यम के दूतों को तो मार भगाया, फिर वो बच गया, अपनी की जान बच गई, फिर वो हरिद्वार के माँ जाकर के और भगवान की भक्ति करी, और भक्ति करने से अपने को फिर कल्याण हो गया। तो बिना जाने ये भगवान की भक्ति करने से लाभ होए, और समझो कि भगवान को भगवान मान करके अरब की भक्ति करी जावे तो और विशेष लाभ हुए, और आगे जाकर मैं को भगवान के विषय को ज्ञान हो जावे तो और भी ज्यादा लाभ हुए, और फिर मैं को ज्ञान होकर के मैं श्रद्धा हो जावे तो और भी जाकर के अधिक लाभ हुए, और वह श्रद्धा फिर निष्काम हुए तो फिर मैं को लाभ को ठिकाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार समझ करके के भगवान के नाम को निरंतर जप करना चाहिए और गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी ने जनावा नहीं कि मैं करूं, और वो एकता करे तार नहीं टूटी, भगवान के नाम को जप और भगवान के स्वरूप को ध्यान जी की माप एक तार करे। भगवान के बहुत से नाम है, उनमें कोई भी नाम हो जिसमें आपकी श्रद्धा प्रीति विश्वास हो, कोई आपके लिए सबसे बढ़ करके है, जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह खुदा, अंग्रेजों के लिए गॉड, और हिंदुओं के लिए ओम राम हरि गोविंद वासुदेव नारायण, जो भी कोई भगवान को नाम, तो जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति है वही नाम को आप जप है तो निरंतर करे, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे, और भगवान के मां प्रेम होने के लिए या भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से करे तो वो निष्काम के तुल है। कोई भी प्रकार की कामना नहीं करे तो भगवान समय पर अपने आप ही उसको मिलेंगे, चाहे भगवान की कामना भी न करे। तो इस प्रकार को जो भजन है वो दामी है, इसी प्रकार से भगवान को ध्यान करे, और ध्यान के मां भगवान को जो रूप और लावण है वो एक अलौकिक है, संसार के मां वह तो रूप लावण है ही नहीं, करोड़ों कामदेवों की भी उपमा देने तो के बराबर उपमा लाग नहीं सके, वह तो आप समझो कि अनुपम है, अनुपम है, क्योंकि समान को उत्तम निर्पण के साथ में किसकी उपमा लाग सके नहीं, उसके सादृश कोई चीज नहीं तो उपमा किसकी दी जाए। पर इतना सुंदर है, एक बार में कि कोई झांकी देख ले असली रूप की तो बस वो तनवा हो जाए, संसार को और अपना ज्ञान भी भूल जाए, तो मैंने आनंदित माहौल की कोई सीमा नहीं, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को पूर्णिमा के चंद्रमा को देख देख करके मुग्ध हुए, जब तक चंद्रमा जी का देख पड़ रहे एक तक पलक भी नहीं जपे, इस प्रकार से वो भगवान ने देख पड़ रहे पलक में पड़े ही नहीं। चकोर पक्षी को उदाहरण भी यहाँ नहीं है तो घटे, क्योंकि वर्ग समान कोई चकोर पक्षी थोड़ी, वर्ग समान तो वही है कौन की भगवान को घर ऐसो ध्यान करे, और नेत्रों के द्वारा मैं को रूप लावण देख करके मुखाविंद देख करके माने मैंने मैं पी जाऊं, माने देखते ही रहूं, और देखते देखते प्रभु को चित्र तो रह जा अपने आप को भूल जा, और ध्यान करने के समय में बार बार रोमांच छोड़ने लगे, आंसू पास होने लगे। और मैंने आखिर जो है कि देखो मैं तुझ आदमी जिकने भगवान मिला, किसी आश्चर्य की बात है। तो मैं आनंद की सीमा को नहीं रहे, ज्ञान की सीमा को नहीं रहे, शांति की सीमा को नहीं रहे। देखो स्वरूप देकर के फिर भगवान के चरित्र ने याद करे, भगवान के राम के चरित्र ने, कृष्ण जी के चरित्र ने, जिसको रूप आपने प्यारो है, जिसको आपने इष्ट हो, जब अपनी श्रद्धा आवे, बैंक आचरण ने, बैंक लीला ने याद करे, और लीला ने देख देख करके अपने मुग्ध हो गए, वह लीला मन से देखे एक प्रकार, और उस मानसिक लीला को देख करके एकदम उस ध्यान के बीच के मतन में हो जाए, और उस लीला के बीच के वहां फिर गुणा को दर्शन करे। गुण ये कि भगवान बड़े प्रेमी है, बड़े दयालु है, क्षमावान है, ये सब उनके अनंत गुण है। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, अनेक गुण बड़े, और एक ही गुण अपार है, अपरिमित है। हम लोग जो अनुमान करते हैं, समझते हैं, वो हमारा अनुमान बहुत ही कमजोर है। इस प्रकार के उसके गुणों को देख देख करके मुग्ध है कि वो तेरे पर भगवान कितनी दया है। भगवान एक प्रकार से तू जो तुझ नाना कहते उससे भगवान इतनो प्रेम करना चाहे है, भगवान की तरफ से समझो कि फाट खुला हुआ है कि तुम चले आओ। भगवान को हमारे सिर के ऊपर हाथ है, अब हमारे को कौन बात की चिंता। भगवान की दया के रहस्य को समझ जावे, तत्व समझ जावे।